सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोये सवसाहूणं सयलोवसगणिवहा संवरणेनेवजस्सपिट्टन्ति पाशस्सतसणमिं फासनुयोऽं परूवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब हमारी ये 13वीं पुस्तक जो है पंचम खंड शुरू हुआ है, वर्गणा खंड नाम है उसका, और उसमें स्पर्श अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। हम 11 पृष्ठ पर आए हैं, परंतु आपकी शंका है 6 पृष्ठ पर जो क्षेत्र का अर्थ समझाया था वह ख्याल में नहीं आया, उसको फिर देखते हैं। यहां तो विषय में तो कौन से नए का कौन सा स्पर्श विषय होता है उसकी बात थी, उसमें से क्षेत्र किसको कहना, तो आकाश के क्षेत्र को यहां क्षेत्र नहीं कहा है ये बात बता रहे। क्षेत्र स्पर्श जो कहा है तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ स्पर्श होता है उसी को क्षेत्र स्पर्श भी कहा है। तो देखा है, हम फिर इसको पढ़ते हैं 8वें सूत्र के नीचे जो अर्थ लिखा है। अब इस गाथा सूत्र का अर्थ कहते, यथा क्षी धातु का अर्थ निवास करना है, इसलिए क्षेत्र शब्द का यह अर्थ है कि जिसमें पुद्गल आदि द्रव्य निवास करते हैं उसे क्षेत्र अर्थात आकाश कहते हैं। एक जो क्षेत्र वह एक क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार इस व्युत्पत्ति का आलंबन लेकर यदि एक आकाश प्रदेश ग्रहण किया जाता है तो एक क्षेत्र स्पर्श नहीं बनता। व्युत्पत्ति के अनुसार क्षेत्र किसको कहते हैं, तो आकाश को कहते हैं। तो एक क्षेत्र यानी आकाश का एक प्रदेश ऐसा यदि इन केस हम अर्थ करेंगे तो यह अर्थ यहां बराबर नहीं है, ये बात बता रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि अन्य द्रव्यों का अपने सिवाय अन्य द्रव्यों में निवास नहीं पाया जाता। हम कहते जो सभी द्रव्य आकाश में रहते हैं वो तो व्यवहार कथन है, उपचार कथन है। प्रत्येक द्रव्य अपने में रहता है और सभी पदार्थ अपने स्वरूप में निविष्ट ही उपलब्ध होते हैं। अपने स्वरूप में रहते हुए ही वो उपलब्ध है, अनादि से ही है। ऐसा नियम है जो जिसकी स्वरूप उपलब्धि का कारण होता है वही उसका आधार माना जाता है। यानी प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप की उपलब्धि किसके आधार से है, वो अपने स्वयं के आधार से है, तो वही उसका आधार है, वही उसका क्षेत्र कहने में आएगा। यही थी ना आपकी शंका। अभी फिर दोबारा दूसरी शंका आपकी है पृष्ठ संख्या 10 पर, जो नीचे शंका समाधान लिखा है। ये विषय कौन सा चल रहा था, अभी तो ये जो 9 निक्षेप है उसकी बात समझा रहे हैं। पहला है नाम निक्षेप, यानी नाम स्पर्श। स्पर्श ऐसा नाम रखना वही नाम स्पर्श है। स्थापना स्पर्श में किसी चीज में, हम कहते हैं स्थापना निक्षेप किसको कहना, एक वस्तु में अन्य वस्तु को हम वहाँ बुद्धि द्वारा वहाँ निक्षेप करते हैं, वहाँ बुद्धि द्वारा समझते कि ये अन्य चीज इस वस्तु में है। ऐसे स्पर्श जो है वो किसी अन्य में कल्पना करना बुद्धि द्वारा, उसको कहते हैं स्थापना स्पर्श। तो शंकाकार ने पूछा था, अभी किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की स्थापना की, कौन सी अन्य वस्तु की, स्पर्श की स्थापना की। स्पर्श का ही निक्षेप चल रहा है ना, जैसे हम मूर्ति में तो भगवान की स्थापना की, परंतु यहाँ किसी चीज में हमने कह दिया ये स्पर्श है, तो ये स्पर्श की स्थापना की, उस पर शंकाकार की शंका है कि यहाँ स्पृश्य स्पर्शक भाव कैसे हो सकता है। दो चीज़ें आई ना, तो वहाँ एक ने स्पर्श किया और एक को स्पर्श किया, दो भिन्न हो गए तभी तो स्पर्श वहाँ होगा, तो ये दो की भिन्नता कैसे स्थापित हो सकती है, उस पर समाधान किया था। क्योंकि बुद्धि से एकत्व को प्राप्त हुए उनमें, अब मान लेते ये रबर है यहाँ पर मेरे हाथ में और इरेजर, और हमने इसमें स्पर्श स्थापन किया, तो कहते ये दो में स्पर्श कैसा हो जाएगा, तो कहते एक वस्तु है, हमने बुद्धि के द्वारा दूसरी वस्तु वहाँ स्थापित की तो उनका स्पर्श हो गया। इस तरह से स्पृश्य जिसको स्पर्श करते वो स्पृश्य, और स्पर्शक यानी जो स्पर्श करता है वो स्पर्शक, ऐसे होने में कोई विरोध नहीं आता। दूसरी भी बात कौन सी, अथवा सत्व और प्रमेयत्व, सत्व यानी अस्तित्व है उसका, सत्ता है, और प्रमेयत्व यानी ज्ञान में आने योग्य उसमें जो गुण है उसका, उसकी आदि की अपेक्षा सबका सर्व विषयक स्पर्शन पाया जाता है, उसकी अपेक्षा तो सभी द्रव्यों में वो स्पर्श पाया जाएगा। इसी का विशेषार्थ हमने कल देखा था, वो समझ में आए। अच्छा, अब हम 11वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। देखो पांचवा खंड, हाँ 12वीं गाथा, ऊपर क्या लिखा है वो पूछ रहे हैं आप। भाग 1, 2, 3 है बन, वो ऊपर क्या लिखा है पता नहीं। वो जो 3 का 4 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कम्मानुयोग द्वारम। अच्छा, अनुयोग द्वार पर, वो अनुयोग द्वार की संख्या होगी। नहीं मगर अभी हमने दो ही अनुयोग द्वार पढ़े ना, नए विभाषण तो और निक्षेप की बात चल रही है, देखेंगे कहीं वो उसका आएगा। अभी हम हाँ पहले से ही 3 लिखा है, अभी हम देखते हैं 11 नंबर पृष्ठ पर 11वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। जो सो दव फासो नामा, अब द्रव्य स्पर्श का अधिकार है, हमने नाम स्पर्श और स्थापना स्पर्श देखे, अब द्रव्य स्पर्श। यह वचन पूर्व प्रतिज्ञा की संभाल करता है, अथवा आगे इसका अर्थ कहते हैं यह जतलाने के लिए यह वचन कहा है। जम दव्व दव्वेण फुसदी सो सव्वो दव्व फासो नाम, जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श को प्राप्त होता है, द्रव्य से स्पर्श को प्राप्त होता है, वह सब द्रव्य स्पर्श है। यानी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ स्पर्श होना उसको द्रव्य स्पर्श कहा। यथा परमाणु पुद्गल शेष पुद्गल द्रव्य के साथ स्पर्श को प्राप्त होता है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य रूप से परमाणु पुद्गल का शेष पुद्गल परमाणु पुद्गल का फिर पढ़ती हूँ पुद्गल द्रव्य रूप से परमाणु पुद्गल का शेष पुद्गलों के साथ एकत्व पाया जाता है। एक पुद्गल द्रव्य का शेष पुद्गल द्रव्यों के साथ जो संयोग या समवाय संबंध होता है, संयोग होना, अब संयोग वियोग तो समझते हैं, समवाय ने समूह रूप से होना, वह द्रव्य स्पर्श कहलाता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो संबंध आता है, यहाँ पुद्गल की बात नहीं है, एक पुद्गल का अन्य पुद्गल के साथ हम कहते हैं ना स्कंद हुआ, तो वहां स्पर्श हुआ उनका। अथवा जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का जो एक में एक संबंध होता है वह द्रव्य स्पर्श कहलाता है। जीव और पुद्गलों का भी जो एक में एक संबंध है, उनका जो बंध हम कहेंगे, तो उसको भी द्रव्य स्पर्श कहेंगे। अब शंकाकार पूछता है जीव द्रव्य अमूर्त है और पुद्गल द्रव्य मूर्त है, इनका एक में एक संबंध कैसे हो सकता है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में जीवों में अमूर्तपना नहीं पाया जाता। ये बात पहले भी आई थी कि संसारी जीवों, हाँ, जैसे हम संसारी और मुक्त ऐसे दो भेद करते हैं, वैसे जीवों के भी मूर्त और अमूर्त दो भेद करते हैं, क्योंकि संसार अवस्था में वो हमेशा ही कर्मों से बंधा हुआ पाया जाता है, तो उसको कथनचित उस अपेक्षा से मूर्त भी कहने में आता है। फिर शंका, यदि संसार अवस्था में जीव मूर्त है तो मुक्त होने पर वह अमूर्तपने को कैसे प्राप्त हो सकता है? ये अमूर्त, वो बाद में अमूर्त बना ये बात नहीं है, उसका लक्षण तो अमूर्तिक है, परंतु संसार अवस्था में वो हमेशा ही कर्मों से साथ बंधा हुआ है। देखो, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव में मूर्तत्व का कारण कर्म है। पूछा था ना, वो पहले जीव मूर्त था और बाद में अमूर्त कैसे हुआ, तो मूर्त क्यों कहा जा रहा था या मूर्त क्यों बन रहा था, तो कर्मों के कारण। अतः कर्म का अभाव हो जाने पर तद्जनित यानी उसके द्वारा उत्पन्न मूर्तत्व का भी अभाव हो जाता है, इसलिए सिद्ध जीवों के अमूर्तपने की सिद्धि हो जाती है। अब फिर शंका, जीव और पदगलों का आदिबंध कैसे है? आदिबंध है ना, बिगिनिंग, तो उसका समझ नहीं, क्योंकि प्रवाह रूप से जीव और पुद्गल अनादि बंधन बंध है। प्रवाह रूप से अगर देखेंगे तो अनादि से ही बंधा है, परंतु किसी विवक्षित परमाणु के साथ क्या वो अनादि से बंधा है क्या नहीं है? नहीं, उसको आदि हो गए, अतः उसका आदि नहीं बनता। पर इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यक्ति रूप बंध की अपेक्षा, कर्म व्यक्ति यानी विवक्षित कर्म, पर्टिकुलर कर्म, यानी विवक्षित कर्म की अपेक्षा वो अनादि है, ऐसा अर्थ नहीं है। पहले निगेटिव बताया ना, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म व्यक्ति यानी विशिष्ट कर्म की बंध की अपेक्षा वह अनादि है। इसका अर्थ क्या है? अभी वो पहले ऐसा नहीं है, यहां पर लगाएंगे, किसी विवक्षित कर्म की अपेक्षा वह बंध अनादि का नहीं है। यदि है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? ऐसा मानने पर कर्म का कभी नाश नहीं होने से जीव के मरण के अभाव का प्रसंग आता है, और यानी वो बंध तो है ही, तो उसका मरण भी नहीं होगा, क्योंकि वही के वही कर्म, आयु कर्म भी वही का वही कायम है, तो मरण के अभाव का प्रसंग आता है। और उपजीवी औषधियों के निमित्त से व्याधि विनाश के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। ये द्रव्यत्व गुण में हम जब हम सीखते थे ना, तो निरंतर परिणमन है, तो यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो जो बीमार है वो हमेशा बीमार ही रहेगा। यहाँ व्याधि लिखा है ना, कि औषधियों के निमित्त से भी व्याधियों का विनाश नहीं होगा, व्याधियों के विनाश के अभाव यानी व्याधि व्याधि रूप से ही रहेगी, और जीव कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि वे ही के वे ही कर्म उसके साथ कायम है। पुद्गलों का जीव और पुद्गलों के साथ ही स्पर्श नहीं पाया जाता है, वो दूसरा पुद्गल है ना, उसको पूरस्व करना। क्या कहना चाहते हैं? यहां तो पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध बताया, पुद्गल का जीव के साथ भी बंध उन्होंने बता दिया। अब कहते हैं, पुद्गलों का जीव और पुद्गलों के साथ ही स्पर्श नहीं पाया जाता, अन्य भी किसी के साथ पाया जाता है, तो किसके साथ है? किंतु आकाश आदि द्रव्यों के साथ भी उनका स्पर्श पाया जाता है, क्योंकि नैगम नय की अपेक्षा इनकी प्रत्यासक्ति देखी जाती है, क्योंकि वो सभी द्रव्य आपस में एक क्षेत्र का संबंध हम देखते ना, वो जो हम पहले पढ़ते थे, यहाँ का क्षेत्र नहीं, परंतु एक ही क्षेत्र में जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म अधर्म आकाश सभी है, तो उसको कहते वो एक दूसरे को वो स्पर्श कर रहे हैं। शंका, द्रव्य की स्पर्श संज्ञा कैसे है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है या जो स्पर्श करता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्पर्श शब्द की सिद्धि होने से द्रव्य की स्पर्श संज्ञा बन जाती है, यानी द्रव्य को ही स्पर्श यहाँ कह दिया है। सत्व और प्रमेयत्व आदि की अपेक्षा सदृश ऐसे छहों द्रव्यों के भी, अभी यहाँ अस्तित्व और प्रमेयत्व लिया है हम, तो वो सभी छह सामान्य गुण लगा सकते हैं, एक पहला लिया एक अन्य अंत वाला लिया, तो आदि में वो सब लेना, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व आगुर लघुत्व वगैरह, ये प्रमेय अंतिम हम प्रदेशत्व को, हाँ हाँ ये प्रमेयत्व लिया उन्होंने, तो आदि की अपेक्षा सदृश ऐसे छहों द्रव्यों के भी द्रव्य स्पर्श नैगम नय की अपेक्षा पाया जाता है। देखो नैगम नय क्या कहते हैं हम, ये द्रव्य निक्षेप की बात हो रही है, द्रव्य निक्षेप है, जैसे हम अभी चावल धो रहे हैं तो क्या कहते हैं, क्या कर रहे हो, तो भात पका रही हूँ, अभी तो गैस भी नहीं ऑन किया है ना, तो पकाने की क्रिया हमने शुरू किया, ऐसे कहते हैं उसको, वो द्रव्य निक्षेप उसमें आता है। तो यहाँ कहते हैं नैगम नय, इसी को नैगम नय कहते ना, तो ये नैगम नय की अपेक्षा छह द्रव्यों को भी द्रव्य स्पर्श ऐसे कहने में आता है। इसलिए एक आदि संयोगों की अपेक्षा जितने भंग उत्पन्न होते हैं उन्हें बतलाते हैं। अभी दो द्रव्यों की भी जरूरत नहीं, एक द्रव्य को ही स्पर्श कह दिया उन्होंने, या क्या ऊपर क्या लिखा है, जिनके द्वारा स्पर्श किया जाता है या जो स्पर्श करता है उसे भी स्पर्श कहा, तो छह द्रव्यों को यहां स्पर्श कहेंगे, द्रव्य स्पर्श, तो उसमें एक संयोग वाला भी भंग उसमें कहेंगे, यानी छह द्रव्यों को अलग अलग कहें, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, सबको द्रव्य स्पर्श कहेंगे, ये द्रव्य है ना, और वो द्रव्यों को ही स्पर्श संज्ञा कह दिए, तो वो द्रव्य स्पर्श हो गया। तो एक आदि संयोग, यानी ऐसे कितने कितने संयोग हो सकते हैं यहाँ पर, एक संयोगी बता दिया, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुर्संयोगी, पंचसंयोगी और षट संयोगी, तो छह तक के संयोग हो जाएंगे, उन्हें बतलाते हैं। यथा अभी कौन कौन से इसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको बताएंगे, उसको भंग कहेंगे। एक जीव दूसरे जीव द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, क्योंकि एक निगोद शरीर में समवेत यानी एक साथ अनंत निगोद जीवों का अवस्थान पाया जाता है, अथवा जीव रूप से उन सब में एकत्व देखा जाता है, एकत्व का दिखाई देने वाले से भी उसको स्पर्श ऐसी संज्ञा यहाँ प्राप्त होती है। अब दूसरा भंग बताएंगे, एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, क्योंकि समवेत अनंत पुद्गल परमाणु पाए जाते हैं, अथवा पुद्गल रूप से उनमें एकत्व देखा जाता है, ये पुद्गल रूप जीव का जीव के साथ एकत्व, उसको भी वो द्रव्य स्पर्श कहेंगे, पुद्गल का पुद्गल के साथ, दोनों अपेक्षाएं बता दी यहाँ पर उन्होंने। धर्म द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, तो ये कौन सा अलग धर्म द्रव्य है, क्योंकि असंग्रहिक नैगम नय की अपेक्षा असंग्रहिक संग्रह रूप से, अभी धर्म द्रव्य जो है उसमें प्रदेश कितने हैं, असंख्यात प्रदेश है ना, लोकाकाश के जितने हैं उतने असंख्यात प्रदेश है, तो उसको असंग्रहिक नैगम नय लगा लिया, सबको जुदा जुदा कंसीडर किया, प्रत्येक प्रदेश को नैगम नय है, अभी उन्होंने संग्रह नहीं किया उसको, अभी पहले कभी नहीं सुना था, तो धर्म द्रव्य कितना है, तो लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण और पृथक पृथक द्रव्य संज्ञा को प्राप्त हुए धर्म द्रव्य के प्रदेशों का परस्पर में स्पर्श देखा जाता है, उसके एक एक प्रदेश को द्रव्य संज्ञा दी इस नए की अपेक्षा, यानी धर्म द्रव्य के जितने प्रदेश है उतने प्रत्येक एक प्रदेश को यहाँ द्रव्य संज्ञा देकर उसको स्पर्श कहा, तो एक द्रव्य का दूसरे साथ स्पर्श ऐसा कहेंगे। ये तो अपेक्षित कथन है सारे हो। अधर्म द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, यहां भी वही न्याय बताएंगे, क्योंकि असंग्रहिक नैगम नय की अपेक्षा द्रव्य भाव को प्राप्त हुए अधर्म द्रव्य के स्कंध देश प्रदेश और परमाणुओं का एकत्व देखा जाता है। ये दूसरे एक भाषा आ गई यहां पर। देखो, स्कंध यानी उसका टुकड़ा, देश यानी वो स्कंध का भी और छोटा पार्ट करेंगे उसको देश कहेंगे, वो देश का भी और हिस्सा करेंगे उसको प्रदेश कहेंगे, और सबसे छोटा हिस्सा करेंगे उसको परमाणु कहेंगे। यहां पुद्गल परमाणु की बात नहीं हो रही है, किसी भी द्रव्य में ये एप्लीकेबल है। ये बात कहीं पढ़ी थी, याद है? हमने पहली बार पंचाध्याय में पढ़ा था, स्कंद देश प्रदेश और वो उसका परमाणु। हाँ, यहां तो अन्य द्रव्यों पर भी घटित किया है, क्योंकि अपेक्षित कथन है ना। आधा किया उसको स्कंद कहा था, आधे के आधे को प्रदेश कहा था, यानी देश कहा था, उसके भी आधे को प्रदेश कहा था, और एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म अंश को वहां परमाणु, ये पुद्गल पर वहां घटित किया था। हाँ, समय वो सब जगह होगा, वो गोमटसार में भी आएगी ये बात। अब काल द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, वहां तो कालानु अलग अलग है ही, और वो एक लोका एक दूसरे को स्पर्श करते हुए स्थित है, क्योंकि एक क्षेत्र में स्थापित मुक्ता फलों के समान, मुक्ता फल किसको कहते हैं, मोतियों के समान, एक जगह रखे हुए मोतियों के समान, समवाय से रहित यानी वो जुड़े नहीं है एकमेक से परंतु इकट्ठे रखे हुए, लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण काल परमाणुओं का काल रूप से एकत्व देखा जाता है। वो काल 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 सब समान है द्रव्य, इसलिए भी वहां उनके स्पर्श कहा। अथवा एक लोकाकाश में अवस्थान होने से उनमें एकत्व देखा जाता है। आकाश द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि नैगम नय की अपेक्षा पृथक पृथक द्रव्य, वो द्र करना उसका, द्व हो गया है, पृथक पृथक द्रव्य भाव को प्राप्त हुए आकाश के, अभी आकाश के भी वो चार बातें बताई, स्कंद देश प्रदेश और परमाणुओं का परस्पर स्पर्श देखा जाता है। प्रकृत में उपयुक्त गाथाएं, ये जो गाथाएं वो यहां अभी बता रहे हैं, ये जीवकांड की गाथा है। लोगा का सपदे से एक एक के जेठिया हुए के का रयणानम राशि इव ते कालाणु मुणे औवा। ये गोमरसार जीवकांड की 588 नंबर की गाथा, नीचे उसका फुट नोट में दिया है उदाहरण। अभी इसका अर्थ देखते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान जो एक एक स्थित है वे कालानु है ऐसा जानना चाहिए। ये कालानु यानी काल द्रव्य की बात है। लोकाकाश तो घन स्वरूप है, ये हम फ्लैट जैसे देखते वैसा तो है ही नहीं ना। तो जो कालानु की राशि अगर हम कहें देखेंगे तो वो भी जैसा लोकाकाश है वो सब घन स्वरूप वो पूरी राशि हो जाएगी, एक साइड बाय साइड भी और एक के ऊपर भी है। तो ये रत्नों की राशि की उपमा दी है उसको। दूसरी गाथा, खंदम सयल समत्थम तस्सदु अद्धम भणन्ति देशोक्ति अद्धत्थम च पदेशो अविभागी सो जोस परमाणु। ये पंचा लिखा है, पंचा ने पंचाध्यायी नहीं हो सकती, पंचास्ती काय होगा, क्यों 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 वो भी कहना पड़ेगा, पंचायने पंचाध्यायी क्यों नहीं, पंचाध्यायी क्यों नहीं हो सकते? हाँ, मगर पंचायने दोनों हो सकते हैं ना, तो पंचाध्यायी क्यों नहीं हो सकती है मेरा प्रश्न है। हाँ देखो, अमृतचंद्र के पूर्व भी ये वीरसेना आचार्य हुए हैं, तो वो गाथा वही उद्धृत करेंगे, और पंचाध्यायी पूरी संस्कृत में वहां प्राकृत है ही नहीं है, संस्कृत में। वो 75 नंबर निकाल के देखना। हाँ हाँ, श्लोक जो कुछ होगा। नहीं, पंचाध्यायी है वो, राजमल जी ने लिखी है ऐसा मत है, तो पंचाध्यायीकार इतना ही लिखते हैं। वो संस्कृत है ना सब पूरी, वो प्राकृत में है ही नहीं है। यानी वो कुछ सवाल ही नहीं ना फिर। नहीं, तस्सदु अद्धम बणंती देशोत्ति, ये तो प्राकृत गाथा है। हाँ, पंचास्तिका आपको देखनी है, इसके पीछे होगी, बाद में देखना। यानी इसी अर्थ में वहां भी उन्होंने ली है, पंचाध्यायीकार ने भी। वो तो क्या है, हम शास्त्रों में से तो निकालेंगे ना, उस पर ही अन्य अन्य गाथा बनाएंगे, जो उसका अर्थ देखते भी। जो सर्वांश में समर्थ है उसे स्कंद कहते हैं, यानी सभी पूरे अंश को स्कंद कहेंगे, उसके आधे को देश और आधे के आधे को प्रदेश कहते हैं, और जो अविभागी है उसे परमाणु कहते हैं। हाँ, मूलाचार में है, त्रिलोक पन्नति में, जीवकांड 603 विमी है। क्योंकि ये मूल ग्रंथों में से ही आगे आगे के ग्रंथों में वो आती जाएगी। हाँ हाँ, अब आगे पढ़ेंगे भी हम। तो एक एक संयोगियों की अपेक्षा उन्होंने प्रत्येक संयोगी जिसको कहते हैं, वहां संयोग नहीं है परंतु प्रत्येक भंग भी कहेंगे, वो 6 हो गए। अब द्विसंयोगी भंग कितने हो गए, अब देखते हैं। देखो, अब द्विसंयोगी अपेक्षा द्रव्य के भंगों की उत्पत्ति का कथन करते हैं, यथा जीव द्रव्य के द्वारा पुद्गल द्रव्य स्पर्श किया जाता है, क्योंकि जीव द्रव्य का अनंतानंत कर्म व नोकर्म रूप पुद्गल स्कंधों के साथ एकत्व देखा जाता है, बंधे हुए देखे जाते हैं। कर्म को भी लिया यहां, नो कर्म को, दोनों पुद्गल है ना। अब देखो, जीव का धर्म के साथ, जीव का अधर्म के साथ, हर एक द्रव्य के साथ लगाएंगे, यानी एक एक का पांच पांच के साथ होगा। तो जीव द्रव्य और धर्म द्रव्य का परस्पर में स्पर्श है, क्योंकि सत्व व प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा और लोकमात्र क्षेत्र के अवस्थान की अपेक्षा इनका एकत्व देखा जाता है। दोनों में ये सामान्य गुण भी दोनों में समान है, और उनका रहने का ठिकाना भी लोकाकाश है। फिर जीव और अधर्म द्रव्य का परस्पर में स्पर्श है, कारण पहले के समान कहना चाहिए। जीव और काल द्रव्य का स्पर्श है, कारण सुगम है, क्योंकि जहां जीव रहता है वहीं पर काल द्रव्य भी है। जीव और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, कारण सुगम है। ये जीव पर घटाए, एक जीव पर वो अन्य पांच को स्पर्श वाले वो घटाए। अब पुद्गल की बात, पुद्गल और धर्म द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल और जीव का क्यों नहीं लिया, आगे वाले के लेने, वो पुनरुक्त भंग हो जाएंगे। जीव का पुद्गल के साथ बताया, तो पुद्गल का भी जीव के साथ है ही है, तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इससे से आगे वाले कम होते चले जाएंगे। पुद्गल और धर्म द्रव्य का स्पर्श है, 12 हो गया। पुद्गल और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल और काल द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अभी धर्म की बात आई तो धर्म का उसके आगे वालों के साथ बताएंगे। हाँ, क्योंकि पुद्गल का जीव के साथ है, वो पहले जीव का पुद्गल में वो आ चुका, इसलिए वो पुनरुक्त भंग कहलाते, उसको दोबारा नहीं कहेंगे। तीन एक के, हाँ। तो जो जितनी संख्या उसके आगे वालों के साथ, पीछे वालों के साथ नहीं, क्योंकि पीछे वालों के साथ वो पीछे के भंगों में उसको ले लिया है। अब धर्म और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है, धर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, धर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। ये तो धर्म के साथ आगे के तीन आगे। अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। ये अधर्म के दो हो गए, काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अभी आकाश का हर एक के साथ आया है, अभी आकाश को अलग से नहीं बताएंगे, क्योंकि एक संयोगी में तो लिया था उसको, द्विसंयोगी में वो हर एक के साथ बता चुके हैं। तो द्विसंयोगी कितने हुए? 15 हुए। वो कैसे निकालना? 6 में द्विसंयोगी कैसे निकालेंगे? छ में है ना, तो 6 में जीव का है, पहले का 5, पहले के 5 है, दूसरे के 4। हाँ, यही तो देखो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो क्यों करना? अभी 5, 4, 3, 2, 1 का अभी संकलन धन करो, यानी 5 का संकलन धन, यानी जितनी संख्या है 6 उसमें से 1 माइनस करो। 6 है ना हमारे पास, 6 पद है, गच्छ कहो, तो उसमें क्या करना, 1 कम करो। हाँ, और उसका एक बार संकलन धन करना। 6 में से 1 गया, 5 है, 5 का एक बार संकलन धन। तो कैसे निकालते हैं? 5 × 6 डिवाइडेड बाय 1 × 2 या 2 × 1 करो, कैसे भी। तो ऊपर तो 30 आए, नीचे 2, तो 15 हो गए। अब आगे वाले त्रिसंयोगी भंग यहाँ से शुरू करेंगे। पढ़ने के पहले हम अभी 3-3 संयोगी है ना, तो 4 का संकलन धन करना पड़ेगा, परंतु 2 बार करना पड़ेगा। अभी हमने 5 का एक बार संकलन धन किया था, अभी 4 का, 4 का 2 बार संकलन, 4 × 5 × 6। हाँ, 1 × 2 × 3। देखो देवेंद्र भाई, कुछ ख्याल में आ रहे हैं? क्या बताएं? हाँ, तो द्विसंयोगी अभी हमको त्रिसंयोगी निकालने ना, और 6 में निकालने हैं, तो त्रिसंयोगी है तो 6 में से 2 घाटी करना, 2 कम करना, तो 4 संख्या आई, और 4 का 3 बार दो बार संकलन दें। 4 × 5 × 6 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3, ये 6 चले गए, 4 × 5 = 20। तो त्रिसंयोगी भंग 20 आएंगे। देखो 41 तक है द्विसंयोगी, दो इसलिए घाटी किए क्योंकि जीव पुद्गल और धर्म को साथ में लिया है ना, और जैसे हम पहले एक जीव के साथ 5-5 को लिया था, तो 5 का संकलन धन किया, अभी 3 को लिया तो आगे वो 4 के साथ वो होगा। जीव और पुद्गल को कांस्टेंट रखो और फिर उसके 4 हो गए, फिर जीव और धर्म को कांस्टेंट रखो तो उसके आगे 3 हो गए, इस तरह से। परंतु वो 2 बार संकलन करना है उसका, ये पूरा भी वो बताए न, और उसकी संख्या भी 20 आती है, हमने ये पहले ही उसको सोचा है, अब उसको पढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने 21 पढ़े थे, 21 तो हो गया, तभी तो द्विसंयोगी पूरे हुए। आप ये भंग के बाद 21 नंबर है, आप उसको आदि में पढ़ रहे इसलिए आपको लगता है बाकी रह गया। देखो पहले से शुरू करते हैं, जब एक भंग पूरा बताया उसके बाद एक नंबर डाला है, हाँ तो अभी 21 हमने पढ़े हैं, अभी त्रिसंयोगी भंग यहाँ से शुरू करते हैं। जीव पुद्गल और धर्म द्रव्य का स्पर्श है, जीव और पुद्गल को भी कांस्टेंट रखेंगे और आगे एक एक को ले लेंगे। जीव पुद्गल और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल और काल द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब जीव को धर्म के साथ लगा लेंगे, जीव धर्म और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है, जीव धर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, जीव धर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब जीव और अधर्म, जीव अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, जीव अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। जीव, ये जीव का अधर्म के साथ दो हो गए, अभी जीव काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अभी ये जीव के साथ वाले सब हो गए, 4, 3, 2, 1 ऐसे उसमें लगा ले। अब पुद्गल की बात चलेंगे, पुद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है। अभी पुद्गल को जीव के साथ अभी नहीं लगाना, तो उसके 3, 2 और 1 ऐसे हो जाएंगे। पुद्गल और धर्म को कांस्टेंट रखेंगे, अभी पुद्गल धर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल धर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब पुद्गल का अधर्म के साथ, पुद्गल अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब पुद्गल का काल के साथ, पुद्गल काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। ये पुद्गल के सब हो चुके अभी। अब धर्म से शुरुआत करते हैं, धर्म अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, धर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। ये धर्म के हो गए। अब अधर्म के, अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, उसमें तो एक ही घटित होगा। अभी जीव पुद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य का, अभी चतुस्संयोगी भंग वो कितने हो गए, चतु है ना, अभी 3 घटाना है, 6 में से 3 घटाए, कितने हुए, 3 हुए, और 3 का 3 बार संकलन धन, 3, 4, 5, 6 यानी ऊपर के जो है, हाँ 3, 6 में से अभी चतु है ना, उसमें से 3 माइनस किए तो 3 आए, तो 3 का 3 बार संकलन धन, तो 3 के आगे 3 संख्या लिखनी, 3, 4, 5 और 6 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4। ये 4 के 4 गए, 3 के साथ 3 गए, और बेतरिक सा 5, 3, 15 आ जाएगी चतुस्संयोगी। देखना 41 से लेकर 56 तक है ना। ये चतुस्संयोगी हो जाएगी, ये हमने त्रिसंयोगी देखे थे पहले। और 7 से वहां हमने द्विसंयोगी देखे थे, वो तो द्विसंयोगी लिखा ही था वहां पर। ये चतुस्संयोगी अभी हम पढ़ेंगे 42 से। अब जीव के साथ पहले लगाएंगे, जीव पुद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है। अभी जीव पुद्गल और धर्म को कांस्टेंट रखेंगे, तो आगे कितने रहे, अधर्म आकाश और काल, तो ये 3 का लेना है और 3 बार संकलन धन करना है। जीव पुद्गल धर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल धर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। स्पर्श में वो छपा नहीं बराबर। अब जीव और पुद्गल को अधर्म के साथ लेंगे, जीव पुद्गल अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, फिर जीव पुद्गल काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, यानी वो चार तीन और दो और एक ऐसे उसके जीव के साथ हो गए। अब जीव के हो गए पूरे। अब पुद्गल की बात, जीव धर्म अधर्म और नहीं, ये हो गया था ना, मैंने पढ़ा था। हाँ, 51 हो गए बराबर। पुद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल धर्म क्या हुआ,
52वां पढ़ा अभी मैंने, 51 के बाद शुरू करो पढ़ना।
पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, और पुद्गल धर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अभी पुद्गल का अधर्म के साथ लगा लो, पुद्गल अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये तो पुद्गल की बात हो गई। धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये चतुस्संयोगी भंग यहां हो जाते हैं। अब पंच संयोगी भंग कितने हो गए, पंच संयोगी है ना, तभी चार कम करो, छह में से चार कम कर दो, तो दो का चार बार संकलन धन। वहां से द्विसंयोगी शुरू, एक कम करना, चार कम करना, और चार कम किए तो चार बार संकलन धन करना, उतनी बार उसके यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो हर एक जगह वो अलग रूल लगेगा। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं अभी, दो का चार बार संकलन, यानी दो के आगे चार संख्या लिखनी, तीन चार पाँच छ, और नीचे एक दो तीन चार पाँच, ऊपर दो तीन चार पाँच छ, और नीचे एक दो तीन चार पाँच, तो ये सब इसके साथ चले गए, छ रह गए। तो छ है कि नहीं, देखो कि अपना गणित चुकता है। हाँ उतनी नहीं, परंतु एक से शुरू करके, हाँ उतनी लिखनी, जितने ऊपर आती ना। अभी दो के आगे हमने चार बार है, तो चार आगे की चार संख्या लिखी, दो के आगे चार संख्या लिखनी, तीन चार पाँच छ, ऊपर टोटल पाँच हो गए, तो नीचे भी एक दो तीन चार पाँच लिखने। तो दो का चार बार संकलन धन आ जाएगा, बराबर है ना। तो ये दो तीन चार पाँच नीचे ऊपर कॉमन है, उसको निकाल दिया, उसको कहते हैं उसका अपवर्तन किया, तो छ रह गया। तभी यहाँ चतुस्संयोगी छह भंग हो गए, सॉरी पंच संयोगी छह भंग। जीव पढ़ती हूँ मैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। ये दो हो गए ना पहले दो, जीव के साथ वाले। अभी जीव के ही साथ जीव पुद्गल धर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, जीव धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। ये भी इसमें से पुद्गल को निकाल, एक एक को टाल के बाकी पांच पांच को लिया। अब पुद्गल धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल और, ये तो अंत में लिया, कौन से छह का, पंच संयोगी तो छह हो गए थे ना, 57, 58, 59, 60, 61 और 62, और 62 के बाद जो 63 नंबर का है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये षट संयोगी एक ही होता है, जितने हैं वहां पर उसका एक होगा। इस प्रकार द्रव्य स्पर्श के 63 विकल्प सकारण कहने चाहिए, यहां उपयोगी पढ़ने वाली गाथा। यानी हमने सिंगल एक संयोगी को के 6 देखे, द्वि संयोगी के 15, फिर 15 आते हैं, फिर 6 यानी सिंगल वाले वो जैसे उतने आते हैं, ये संख्या कॉमन रहती दोनों जगह। हाँ, और फिर षट संयोगी एक। अब यहाँ गाथा पढ़ते हैं। सत्ता सौवपयत्था सविस्वरूवाणंत पच्चाया भंगुपाय धुवता सपरिवखा हवैयेका। सत्ता सब पदार्थों में स्थित है, सविश्व रूप है, अनंत पर्याय वाली है, नाश उत्पाद और द्रव्य स्वरूप है, तथा सब प्रतिपक्ष होकर भी एक है। देखो देखो, सविश्व रूप है ना, अनेक रूप है, अनंत पर्याय वाली है, सभी पदार्थों में है ना, सभी स्वरूप। उसके विशेषार्थ बताएंगे, देखो कि उसका अर्थ नहीं दिया है। ये पंचाध्यायी में है, षटखंडागम पुस्तक 9 में है, 171 पृष्ठ 85 का है, 8 नंबर पंचाध्यायी वाला 8। वो तो दवम सल्लाक्षणिकम, वो 8 नंबर हम जहाँ यहाँ देखते थे मंगलाचरण रूप से, पंचाध्याय वाला 8 नंबर का गाथा हम पढ़ते थे। हाँ, सन्मात्रम व अनादि ऐसा वो सब पढ़ते थे यहाँ रोज। यानी वो सत जो सत्ता जो है अस्तित्व है, वो कैसा है, तो सभी पदार्थों में है, सविश्व रूप है, अनंत पर्याय वाली है। हम देखते हैं सत द्रव्य लक्षणम, वो कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, तो उसको कहते हैं नाश उत्पाद और द्रव्य स्वरूप है, और सब प्रतिपक्ष होकर भी एक है, विशेषार्थ। यहाँ द्रव्यों के स्पर्श के भेद और उनके कारणों की विस्तृत चर्चा की गई है। सब द्रव्यों के 2 प्रकार का संबंध दिखलाई देता है, एक अनादि संबंध और दूसरा सादि संबंध। धर्म आदि 4 द्रव्यों के साथ जीव और पुद्गल का तथा उनका परस्पर में अनादि संबंध है, तथा जीव जीव का, जीव पुद्गल का, पुद्गल पुद्गल का, दोनों प्रकार के संबंध देखे जाते हैं। प्रकृत में स्पर्श शब्द की व्याख्या, यानी अभी यहाँ पर इस सूत्र में, जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है या जो स्पर्श करता है, इस व्याख्यान के अनुसार सभी द्रव्यों का परस्पर में स्पर्श भाव बन जाता है। बंध विशेष की अपेक्षा जीव जीव के साथ, जीव पुद्गल के साथ, पुद्गल पुद्गल के साथ परस्पर संश्लेष को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए इनका तो स्पर्श है ही, किंतु सत्व प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा, यानी सामान्य गुणों की अपेक्षा, इनका अन्य द्रव्यों के साथ और अन्य द्रव्यों का परस्पर में स्पर्श बन जाता है। नए विशेष की दृष्टि से यह योजना की गई है, जिसका खुलासा मूल में किया ही है, उसको असंग्रहित नैगम नय की बात की थी ना, वहां पर बताया था। इस प्रकार 6 द्रव्यों के स्वसंयोगी, स्वसंयोगी स्व के साथ एक प्रत्येक भंग जिसको कहते, द्विसंयोगी आदि की अपेक्षा कुल भंग 63 होते हैं, स्वसंयोगी 6, द्विसंयोगी 15, त्रिसंयोगी 20, चतुस्संयोगी 15, पंचसंयोगी 6 और षट्संयोगी 1, कुल 63 भंग होते हैं, इनका स्पष्टीकरण मूल में किया ही है। ये डायरेक्ट हमको निकालने हैं कितने भंग होते हैं टोटल, तो 6 बार 2 को लिखना और आपस में गुणा करना और उसमें से 1 कम करना, तो 6 बार लिखते हैं तो 64 हो जाते हैं, और उसमें से 1 कम करें तो 63 होते हैं। इस प्रकार द्रव्य स्पर्श का कथन समाप्त हुआ। अभी जो एक एक स्पर्श की बात है निक्षेप की, वहाँ अपेक्षा बदलती जाएगी उनकी, वही हर जगह घटित नहीं होगा, नए बदलेंगे, निक्षेप भी अलग अलग होगा। जो सो एयक खेत फासो नामा, अभी हमने द्रव्य स्पर्श की बात देखी थी, अब एक क्षेत्र स्पर्श का अधिकार है, इसकी अर्थ प्ररूपणा करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जम दव्व में यह खेते न फुसदी सो सवो एयक खेत फासो नाम, जो द्रव्य एक क्षेत्र के साथ स्पर्श करता है वह सब एक क्षेत्र स्पर्श है। एक आकाश प्रदेश में स्थित अनंतानंत पुद्गल स्कंधों का समवाय संबंध या संयोग संबंध द्वारा जो स्पर्श होता है वह एक क्षेत्र स्पर्श कहलाता है, अथवा बहुत द्रव्यों का युगपत एक क्षेत्र के स्पर्शन द्वारा एक क्षेत्र स्पर्श कहना चाहिए। यानी एक ही प्रदेश में स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु को यहाँ एक क्षेत्र स्पर्श कहा। देखो इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ एक क्षेत्र स्पर्श का विचार किया गया है। एक क्षेत्र स्पर्श में एक शब्द क्षेत्र का विशेषण है। एक ही क्षेत्र में स्पर्श, एक ही क्षेत्र में रहने वाले जो अनंत परमाणु है उसकी बात है। तदनुसार यह अर्थ फलित होता है कि विवक्षित एक आकाश के प्रदेश के साथ अनंतानंत पुद्गल स्कंधों का या अनेक द्रव्यों का युगपत जो स्पर्श होता है वह एक क्षेत्र स्पर्श कहलाता है। जो सो अनंतर खेत फासो नामा, अब अनंतर क्षेत्र स्पर्श का अधिकार है। जम दव्वम अनंतर खेतेन फुसदी सो सवो अनंतर खेत फासो नामा, जो द्रव्य अनंतर क्षेत्र के साथ स्पर्श करता है वह सब अनंतर क्षेत्र स्पर्श है। अब शंका, अनंतर क्षेत्र किसे कहते हैं? उसका समाधान, एक आकाश प्रदेश रूप क्षेत्र को देखते हुए अनेक आकाश प्रदेश रूप क्षेत्र अनंतर क्षेत्र है, क्योंकि एक और अनेक संख्या के मध्य में अन्य संख्या नहीं उपलब्ध होती। देखो एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ ऐसा नहीं लिया अनंतर क्षेत्र, तो क्षेत्र के लिए एक विशेषण किया था, एक क्षेत्र, वो एक क्षेत्र का विशेषण हुआ, तो उसके अगेंस्ट, एक के अगेंस्ट क्या होगा? अनेक क्षेत्र। तो जो एक नहीं है वो अनेक है, तो इसमें बीच में कोई एकानेक होता है क्या? जैसे जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में मध्यम होते हैं, वैसे एक और अनेक के बीच में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो जो एक नहीं है वो अनेक है, तो उसको अनंतर कहेंगे। इतनी बात यहाँ पर है। अनंतर यानी नेक्स्ट, ऐसा यहाँ नहीं लेना है। फिर इसको पढ़ती हूँ समाधान को। एक आकाश प्रदेश रूप क्षेत्र को देखते हुए अनेक आकाश प्रदेश रूप क्षेत्र अनंतर क्षेत्र है, क्योंकि एक और अनेक संख्या के मध्य में अन्य संख्या नहीं उपलब्ध होती। दो प्रदेशों में स्थित द्रव्यों का दो आकाश के प्रदेशों में स्थित अन्य द्रव्यों के साथ जो स्पर्श होता है वह अनंतर क्षेत्र स्पर्श है। पहले एक ही प्रदेश में स्थित वाले की बात की थी, अब दो प्रदेश, दो ये अनेक हो गए ना, दो कहो, तीन कहो, चार कहो, ये सब अनेक हो जाएंगे। दो प्रदेशों में स्थित स्कंधों का और तीन प्रदेशों में स्थित स्कंधों का जो स्पर्श होता है वह भी अनंतर क्षेत्र स्पर्श है, इसी प्रकार चार पांच आदि प्रदेशों में स्थित स्कंदों के साथ दो संयोग का कथन करते समय क्या कहना चाहते हैं? एक प्रदेश और दो प्रदेश, उसको हम स्पर्श कहेंगे। दो का तीन के साथ, तीन का चार के साथ, चार का पांच के साथ, ऐसा कहां तक चले जाएंगे? तो इसी प्रकार चार पांच आदि प्रदेशों में स्थित स्कंदों के साथ दो संयोग का कथन करते समय, द्विसंयोगी बता रहे ना अभी, कुछ कम लोक में स्थित महास्कंध के प्राप्त होने तक द्वितीय अक्ष का संचार करना चाहिए। द्वितीय अक्ष का संचार यानी वो पहले एक प्रदेश के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, ऐसा भी ले ला, या फिर दो के साथ तीन, दो के साथ ऐसा भी ले सकते हैं। इस क्रम से सभी द्विसंयोगी भंगों का यथा संभव कथन करके तीन संयोगी आदि भंगों का भी कथन करना चाहिए। ये कितने हो गए अधिक विकल्प? ये तो जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने तो चला महास्कंद तक चले जाएंगे, बाकी तो आकाश ही आकाश है, उसको अभी नहीं लेना है क्योंकि अन्य द्रव्यों के साथ लेना है यहाँ पर। तो वहां हमने छह में निकाले थे, अभी द्विसंयोगी ही कितने हो गए, तो एक कम वो जो महास्कंद की जो है उसमें एक कम करो, तो उसके एक एक के साथ उसका एक बार संकलन धन निकालना पड़ेगा, उतने द्विसंयोगी हो जाएंगे। और सभी निकालने हैं तो दो जो है ना लोकाकाश की संख्या, तो उतने बार दो संख्या लिखो और आपस में गुणा करके माइनस एक करो। अथवा अभी दूसरे अर्थ, दूसरे प्रकार से अर्थ देखते हैं। कथन करते समय कुछ कम लोक में स्थित महास्कंद के प्राप्त होने तक द्वितीय अक्ष का संचार करना चाहिए। कुछ कम में वो तो एक उसमें से कम हो गया ना, एक्चुअली एक कम हम लिखना चाहिए था, कुछ कम लिखा है, पता नहीं। यहाँ तो कुछ परमाणु की संख्या तो लिए नहीं ना, आकाश के प्रदेशों की संख्या ली वहां पर। देशों तो एक ही कम होना चाहिए था वहां पर, फिर लिखा तो है देशों ने लोय ठिय मह खंडेती। द्विसंयोगी भंग यथासंभव जो कुछ है, यानी एक का भी हर एक के साथ होगा, दो का भी हर एक के साथ होता, या यहाँ जो बताया एक का दो के साथ, दो का तीन के साथ, तीन का चार के, चार का पांच के, पांच का छह के साथ, इस तरह से वो महास्कंद तक चले जाएंगे, वो भी हो गए क्योंकि वो भी यथासंभव आने वाली ही बात है। अथवा देखो ये दूसरे पद्धति से अर्थ करते, अभी पूर्वोक्त सूत्र में स्थित जो एक शब्द है वह संख्यावाची है ऐसा नहीं कहना चाहिए, किंतु समानार्थवाची है ऐसा कहना चाहिए। ये दूसरी अपेक्षा बता रहे, पहले एक और अनेक में उन्होंने संख्या की बात की थी, अब समानार्थवाची कैसे है, तो कहते हैं इस स्थिति में समान अवगाहना वाले स्कंदों का जो स्पर्श होता है वह एक स्पर्श है, एक क्षेत्र स्पर्श है। समान अवगाहने ने परमाणु की एक प्रदेश है, उसी प्रदेश में एक, जहाँ एक परमाणु है वहीं पर दूसरा परमाणु स्थित हो जावे तो उसको एक क्षेत्र कहेंगे, समान अवगाहना वाला। और असमान अवगाहना वाले स्कंधों का जो स्पर्श होता है वह अनंतर क्षेत्र स्पर्श है। दो प्रकार है, एक ही क्षेत्र में और असमान अवगाहना वाले दो का संयोग होना, स्पर्श होना, उसको अनंतर कहा। शंकाकार पूछता है इसे अनंतरपना कैसे प्राप्त होता है, यानी उसको अनंतर क्यों कहते हो? उसका समाधान, क्योंकि समान और असमान क्षेत्रों के मध्य में अन्य क्षेत्र नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए इसे अनंतरपना प्राप्त होता है। पहले एक और अनेक के बीच में अन्य कुछ नहीं है ऐसा कहा था, अब यहाँ समान को एक कहा और असमान को अनेक कहा। विशेषार्थ, अनंतर शब्द सापेक्ष है। पहले एक क्षेत्र का विवेचन कर आए हैं, उसके सिवा शेष सब क्षेत्र अनंतर क्षेत्र कहलाता है, और इन क्षेत्रों में स्थित स्कंद का स्पर्श अनंतर क्षेत्र स्पर्श कहा जाता है। यदि एक का अर्थ समान किया जाता है तो, पहले तो एक अपेक्षा बता दी, अब एक का अर्थ समान ऐसा करना तो क्या होगा? तो अनंतर क्षेत्र स्पर्श का अर्थ असमान अवगाहना वाले स्कंदों का स्पर्श फलित होता है। इस प्रकार अनंतर क्षेत्र स्पर्श प्ररूपना समाप्त हुई। हाँ, वो तो उनको पता ही नहीं चलता है। ये पूरा उल्टा ही हो जाता है, फिर उनका कथन ही उल्टा हो जाता है। बराबर है। अब देखो 17 नंबर, अरे यहाँ 13 नंबर डाला है नीचे। मैं ही देख रही थी कहाँ क्या हुआ, साथ करना उसको। ऊपर पढ़ेंगे, जो सो देश फासो नाम। अब देश स्पर्श का अधिकार है, उसके अर्थ का विवेचन करते हैं। जम दौव देशम देशे न फुसदी सो सवो देश फासो नाम। जो द्रव्य का एक देश के साथ स्पर्श करता है, वह सब देश स्पर्श है। देश यानी हम कहते ना एक देश, उसका पार्ट अवयव। एक द्रव्य का देश अर्थात अवयव यदि अन्य द्रव्य के देश अर्थात उसके अवयव के साथ स्पर्श करता है, तो वह देश स्पर्श जानना चाहिए। ऐसे होते हैं वो पूरे का पूरे के साथ स्पर्श होना, ये दो के पूरे का पूरे के साथ स्पर्श होना अलग बात है, और उसका खाली एक देश का स्पर्श होना, कुछ उसका इसका पार्ट इसके साथ स्पर्शित है। यह देश स्पर्श स्कंधों के अवयवों का ही होता है, परमाणु रूप पुद्गलों का नहीं, क्योंकि वे निरवयव होते हैं। यदि कोई ऐसा निश्चय करे तो वह ठीक नहीं। ये पूरा पढ़ना चाहिए, हाँ, नहीं तो उसमें वहीं पर रुक दे जाएंगे तो उल्टा ही ग्रहण होगा। क्या कहते हैं कि परमाणुओं के तो कोई अवयव ही नहीं है, इसलिए उनका एक देश स्पर्श होता नहीं, ऐसा यदि कोई कहता है तो वो ठीक नहीं है। ये बात बता रहे, अभी उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्योंकि परमाणु निरवयव होते हैं यह बात असिद्ध है। तो परमाणुओं के कौन से अवयव होते हैं आपको पता है? हाँ हाँ, नहीं गुणों की बात नहीं है यहाँ, तो स्पर्श की बात करें ना, गुणों के द्वारा थोड़े ही बताएंगे। हाँ, जिसका अवयव, अभी जैसे अवयव ये जो है ना चीज, देखो ये बात हमने पंचाध्याय में भी पढ़ी थी कि परमाणु को भी षटकोण कहने में आता है। वो कौन कौन से, क्योंकि अभी वो है तो एक पॉइंट, फिर भी छः ओर से हम उसको देख सकते हैं। कोई भी क्यूबिकल चीज है तो हम उसको छह बाजू से ऐसा देख सकते हैं ना, ऊपर के नीचे छह, चार बाजू से, तो यही उसके छह अंग कहने में आएंगे, वो उसके अवयव। तो ये पूर्व की ओर से वो चिपका है, दक्षिण की ओर की चिपका है, या नीचे की ओर से चिपका है, ऐसा कहेंगे ना हम, तो उसका अवयव कहेंगे। देखो ये कथनचित यानी उसकी अपेक्षा से बात की है। आगे वहां लिखते है, देखो परमाणु अप्रदेशित होता है और उसका इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार परमाणुओं का निरवयवपना परिक्रम में कहा है। यदि कोई ऐसी आशंका करे तो, ये पहले आशंका बताए, तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदेश का अर्थ परमाणु है। वह जिस परमाणु में समवेद भाव से नहीं है वह परमाणु अप्रदेशी है, इस प्रकार परिक्रम में कहा है। इसलिए परमाणु निरवय होता है यह बात परिकर्म से नहीं जानी जाती। परिकर्म में जो कुछ कथन है वो अलग अपेक्षा से है, यहाँ उसके आधार से भी वो निरवय है ये बात सिद्ध नहीं होती। तो अभी शंकाकार पूछता है कि परमाणु सावयव होता है यह किस प्रमाण से जाना जाता है। पहले परमाणु निरवयव नहीं है ऐसा सिद्ध किया, उसका अर्थ क्या, सावयव है, अवयव सहित है, तो ये कहाँ से जाना जाता है। उसका समाधान, स्कंद भाव को अन्यथा वह प्राप्त नहीं हो सकता, इसी से जाना जाता है कि परमाणु सावयव होता है। यदि परमाणु निरवयव होवे तो स्कंदों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब परमाणुओं के अवयव नहीं होंगे तो उनका एक देश स्पर्श नहीं बनेगा, और एक देश स्पर्श के बिना सर्वस्पर्श मानना पड़ेगा। क्या कहना है, यदि उसके एक देश का स्पर्श होता ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या है, सर्वस्पर्श होगा, तो सर्वस्पर्श उसी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे हम ये टाइल्स हम देखेंगे तो ये टाइल्स की एक बाजू दूसरे टाइल के एक बाजू से लगी है, फिर उसके और तीन बाजुओं को और तीन टाइल्स लगी है। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो सभी टाइल्स एक के ऊपर एक ही इम्पोज होगी, तो उसका स्कंद ने बहुप्रदेशी स्कंद नहीं बन सकता था। क्या लिखा कि यदि उसके एक देश स्पर्श नहीं होगा और सर्वस्पर्श होगा तो स्कंदों की उत्पत्ति नहीं होगी, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उत्पन्न हुए स्कंदों की उपलब्धि होती है, स्कंद तो देखने में आते हैं, इसलिए परमाणु सावयव होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसी बात को विशेषार्थ में समझाते हैं। एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ जो एक देश स्पर्श होता है उसे देश स्पर्श कहते हैं। उदाहरणार्थ एक स्कंद का अन्य स्कंद के साथ बंध होने पर जो नया स्कंद बनता है वह देश स्पर्श का उदाहरण है। इसी प्रकार एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बंध होने पर जो दो प्रदेशावगाही स्कंद बनता है, ये कंडीशन क्यों डाली, एक क्षेत्रावगाही होगा तो क्या होगा, एक ही प्रदेश में दोनों है उसकी बात नहीं, तो सर्वस्पर्श हो गया उसका, हमें देश स्पर्श चाहिए। इसलिए एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बंध होने पर जो दो प्रदेश अवगाही स्कंद, दो प्रदेश क्योंकि दो परमाणु दो प्रदेशों में स्थित है, वो जो स्कंद बनता है वह भी देश स्पर्श का उदाहरण है। प्रकृत में परमाणु को सावयव सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी गई है और आगम का अर्थ किया गया है उसका भाव इतना ही है कि परमाणु के छेद करना तो शक्य नहीं है, क्योंकि उसको आदि मध्य अंत नहीं होते, उसका छेद नहीं हो सकता, परंतु पूर्व भाग पश्चिम भाग इत्यादि रूप से उसका भी विभाग होता है। उसको छह बाजुओं से हम देखेंगे तो ये उसका विभाग कहलाएगा, वो अपेक्षित बात है उसकी। अन्य दर्शनों में परमाणु को जैसा सर्वथा निरंश कहा है वैसा निरंश जैन दर्शन नहीं मानता। ये सर्वथा की बात उसमें भी अनेकांत लगाया। ये हो गई अभी देश स्पर्श की बात हो गई। जो सो तय फासो नाम, अब त्वक स्पर्श का अधिकार है, इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। सर्वथा निरंश यानी परमाणु का बिल्कुल कोई भाग ही नहीं होता ऐसा कहेंगे, सर्वथा बात लगाई तो उसके भी ये छह, अभी हमने देखे ना छह बाजू से हम उसको बता सकते हैं, तो यही उसके अंश भी कहने में आ गए। सर्वथा निरंश नहीं है ये बात उसमें सिद्ध होती है। बिंदु तो एक है, उसके दो भाग तो नहीं हो गए, परंतु उसको हम छह बाजू से देख सकते हैं, उसको छह कोण भी कहा है शास्त्रों में, षटकोण। ये षटकोण यानी वो ऐसा जो हमको षटकोण है वो षटकोण नहीं है, हाँ आयत भी कहेंगे फिर भी उसमें जो ये बातें आती है, अरे इसके तो भेद हो सकते, वैसा भी नहीं है, वो स्मॉलेस्ट पॉइंट है, मगर उसको हम 6 बाजू से देख सकते, उसी को उसके कोण भी कहे हैं। त्वक, ये अब त्वक स्पर्श का अधिकार है, इसका अर्थ जम दौवम तयम वा नो तयम वा फुसदी सो सौवो तय फासो नाम। जो द्रव्य त्वचा या नो त्वचा को स्पर्श करता है, त्वक कहने त्वचा बात आई ना, वह सब त्वक स्पर्श है, वो त्वचा नो त्वचा क्या है उसको भी बताएंगे। वृक्ष गच्छ या स्कंधों की छाल को चाहिए, वो छल को हुआ है, वृक्षाणम गच्छाणम कंधाणम व वक्कलम, वक्कल यानी छाल, पहले वो वलकल, रुख गच्छ, गच्छ यानी वही तो पेड़ वगैरह जो है उसी को कहा है, ट्रंक जिसको कहते हम, थड़, वृक्ष गच्छ या स्कंदों की छाल को त्वचा कहते हैं, और उसके ऊपर जो पपड़ी का समूह होता है उसे नो त्वचा कहते हैं। वो पतला जो होता है ना, अथवा पतला जो आता है उसके ऊपर, अथवा सूरण अदरक प्याज और हल्दी आदि की जो बाह्य पपड़ी का समूह है उसे नो त्वचा कहते हैं। वो पतला आता है ना अदरक के ऊपर की पतली छालें, वो प्याज के ऊपर वाली भी एकदम बाहर वाली वो पतली वाली, अंदर तो होते लेयर्स उसको नहीं समझना, ये बाहर वाली पतली छाल। जो द्रव्य त्वचा या नो त्वचा को स्पर्श करता है वह त्वक स्पर्श कहलाता है। शंका, श के ऊपर बिंदी लगाना, यह त्वक स्पर्श द्रव्य स्पर्श में अंतर्भाव को क्यों नहीं प्राप्त होता, द्रव्य स्पर्श में जो पहले बताए थे उसमें इसको क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सब मिलकर एक ही चीज है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि त्वचा और नो त्वचा स्कंध में समवेत है, अतः उन्हें पृथक द्रव्य नहीं माना जा सकता। स्कंध त्वचा और नो त्वचा का समुदाय द्रव्य है, क्या कहते हैं, स्कंध त्वचा और नो त्वचा का समुदाय द्रव्य है, पर एक द्रव्य में द्रव्य स्पर्श नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने पर विरोध आता है। यहां भी अपेक्षा बदल, अभी एक कोई चीज है तो उसमें बीच वाला उसको स्कंध कहेंगे, हम पेड़ की बात करेंगे, वृक्ष में, वृक्ष के जो बड़ा होता है ना उसको स्कंध यानी उसको ट्रंक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको तो हाँ स्कंध कहा, और उसके ऊपर की जो बाहर की छाल है वो त्वचा कही, और एकदम बाहर की पपड़ी यानी बिल्कुल पतली उसको नो त्वचा कहा, तो उसका आपस में स्पर्श ये बात बताना चाहते हैं। यदि पूरा का एक द्रव्य कहेंगे तो उसमें द्रव्य में ही स्पर्श नहीं बनेगा, इसलिए इसको अलग से, क्योंकि अपेक्षित बात है ना, पहले अलग अलग अपेक्षाओं से कहे आए, अब यहाँ दूसरी और अपेक्षा लगा रहे हैं। यहाँ स्पर्श के भंग बतलाते हैं, अब यहाँ तीन बातें ना, स्कंध त्वचा और नो त्वचा, तो यहाँ कहते हैं इसके भंग बतलाते, यहाँ स्कंध त्वचा को स्पर्श करता है, स्कंध नो त्वचा को स्पर्श करता है, स्कंध त्वचाओं को स्पर्श करता है, अभी अनेक वचन लिया, स्कंध नो त्वचाओं को स्पर्श करता है, अब एक एक के साथ लिया ना पहले, अब स्कंध त्वचा और नो त्वचा को स्पर्श करता है, यानी एक त्वचा और, अब यानी तीन वाले लिए, स्कंध त्वचा और नो त्वचा, कहीं वृक्ष आदि विशेष में स्कंध एक त्वचा और अनेक नो त्वचाओं को स्पर्श करता है, यानी किसी विशिष्ट वृक्ष में स्कंध जो है वो त्वचा तो एक है और नौ त्वचा अनेक है, उसको स्पर्श करता है। कहीं स्कंध अनेक त्वचाओं और एक नौ त्वचा को स्पर्श करता है, त्वचा अनेक है और नौ त्वचा एक है। कहीं वृक्षादिक स्कंध अनेक त्वचाओं और अनेक नौ त्वचाओं को स्पर्श करता है। इस प्रकार आठ भंग होते हैं। स्कंध को कायम रखा है और त्वचा और नौ त्वचा को पहले सिंगल सिंगल लिया, सिंगल सिंगल में एक एक लिया और अनेक अनेक लिया दोनों के, और फिर त्वचा में एक नौ त्वचा में अनेक, त्वचा में अनेक नौ त्वचा में एक, या फिर नौ त्वचा में एक अनेक, ऐसा लगाएं। ये आठ भंग होते हैं। अथवा स्कंध के बिना ही त्वचा और नौ त्वचा के स्पर्श संबंधी आठ भंग उत्पन्न करने चाहिए। यथा त्वचा त्वचा को स्पर्श करती है, नौ त्वचा को स्पर्श करती है, अनेक वचन अभी, त्वचाएं त्वचाओं को स्पर्श करती है, नौ त्वचाओं को स्पर्श करती है, फिर त्वचा नौ त्वचा को स्पर्श करती है, त्वचा नौ त्वचाओं को स्पर्श करती है, त्वचाएं नौ त्वचा को स्पर्श करती है और त्वचाएं नौ त्वचाओं को स्पर्श करती है। तो पहले मैं तीन को लेकर लिए, अभी दो को लेकर। शंका, त्वक स्पर्श देश स्पर्श में क्यों नहीं अंतर्भूत होता? या तो वृक्षों की अपेक्षा ये बात ली है त्वचा नौ त्वचा और स्कंध की, तो उसको देश स्पर्श में क्यों नहीं लेना? उसका समाधान नहीं, क्योंकि नाना द्रव्यों को विषय करने वाले देश स्पर्श में एक द्रव्य को विषय करने वाले त्वक स्पर्श का अंतर्भाव मानने में विरोध आता है। विशेषार्थ, द्रव्य स्पर्श में दो द्रव्यों के परस्पर स्पर्श की और देश स्पर्श में दो द्रव्यों के एक देश स्पर्श की मुख्यता रही है। यही कारण है कि त्वक स्पर्श का इन दोनों स्पर्शों में अंतर्भाव नहीं किया। माना कि त्वचा नौ त्वचा और स्कंध अलग अलग अनेक परमाणुओं से बनते हैं, इसलिए इससे अनेक द्रव्यों का ग्रहण होना संभव है। परंतु यानी पर यानि परंतु यहाँ स्कंध रूप से इस सब को एक द्रव्य मानकर त्वक स्पर्श का पृथक से विवेचन किया गया है। यानी यही भी अपेक्षित ही कथन है ना, वो स्कंध को ही एक द्रव्य माना है। है तो सारे अलग अलग परमाणु और अलग अलग स्कंध। इस प्रकार त्वक स्पर्श प्ररूपना समाप्त हुई। यानी स्कंध ने वो पेड़ों की ही अपेक्षा, वृक्षों की अपेक्षा इसकी बात की है। जो सो सव फासो नामा, अब सर्व स्पर्श का अधिकार है उसे कथन करते हैं। जम दव्वम सव्वम सव्वेण फुसदि जहां परमाणु दव्वमिदि सो सव्वो सव्व फासो नामा। जो द्रव्य सबका सब सर्वात्मना स्पर्श करता है, यानी संपूर्ण रीति से स्पर्श होता है उसका, यथा परमाणु द्रव्य, ये तो दृष्टांत हुआ, वह सब द्रव्य स्पर्श है। जो कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के साथ सबका सब सर्वात्मना स्पर्श करता है, वह सर्वस्पर्श है, यथा परमाणु द्रव्य। यह दृष्टांत वचन है, यानी परमाणु को यहाँ याद किया है वो तो दृष्टांत बताने के लिए। आगे इसका अर्थ कहते हैं। जिस प्रकार परमाणु द्रव्य अन्य परमाणु के साथ स्पर्श करता हुआ सबका सब सर्वात्मना स्पर्श करता है, उसी प्रकार अन्य भी जो इस प्रकार का स्पर्श है वह स्पर्श सर्वस्पर्श है, ऐसा जानना चाहिए। शंका, यहां शंकाकार का कहना है कि यह दृष्टांत घटित नहीं होता। वह इस प्रकार से ये शंकाकार ये भी कुछ समझा रहा है। एक परमाणु अन्य परमाणु में प्रवेश करता हुआ क्या एक देश ने प्रवेश करता है या सर्वात्मना प्रवेश करता है? यानी दो परमाणुओं का बंध होता है ना, तो क्या वो तो एक देश से है? तो संपूर्ण रीति से बताया ना उन्होंने, तो कहते कि प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु द्रव्य सबका सब अन्य परमाणु के साथ सर्वात्मना स्पर्श करता है, इस वचन के साथ विरोध आता है। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सर्वात्मना प्रवेश ऐसा जहाँ कहा है तो वो क्या मानता है उसकी बात बता रहे हैं। द्रव्य का द्रव्य में, गंध का गंध में, रूप का रूप में, रस का रस में और स्पर्श का स्पर्श में प्रवेश हो जाने पर परमाणु द्रव्य का अभाव हो जाता है, प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? सर्वात्मना प्रवेश, यानी उसका एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाना मानता है वो, इसलिए कहते वो उस रूप हो जाएगा तो इसका अभाव हो जाएगा। परंतु अभाव हो नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य का अभाव मानने में विरोध आता है। एक पुद्गल का अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य पुद्गल में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि पुद्गल में अवगाहन धर्म का अभाव है। यदि उसमें अवगाहन धर्म का सद्भाव माना भी जाए तो आकाश द्रव्य का अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को पुद्गल ने ही कर दिया। क्या कहते हैं? ये पुद्गल ने दूसरे को अवगाहना दिया ऐसा कहेंगे, तो ये आकाश द्रव्य का जो गुण है, तो पुद्गल ने आकाश का काम कर दिया तो आकाश का अभाव हो जाएगा। ये शंका करके सब लंबी चौड़ी शंका ही चल रही है, पूरा पेज अभी शंका करके शंका ही चल रही है। नहीं तो इसको न्याय नहीं मान लेना। यदि कहा जाए कि सुवर्ण में पारद का अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही प्रवेश देखा जाता है, तो इस पर यह कहना है कि स्कंधों में स्कंधों का प्रवेश भले ही हो जाए, क्योंकि देखो क्या कहते, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बड़ा वाक्य है ना। सुवर्ण में पारद का अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही प्रवेश देखा जाता है, इसका अर्थ ख्याल में आता है? पारा, पारा मर्क्यूरी। तो सुवर्ण और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मर्क्यूरी रूप से ही रहता है, वो सुवर्ण रूप नहीं हो जाता है। आपने शायद जाना है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, वो मर्क्यूरी होगी पूरे भरी हुए, उसमें सोना डाल दो। हाँ तो वो हल्का होता है, उसका सोना स्मगल करते ना, क्या करते वो मर्क्यूरी में डुबा के लाओ, उसका वेट उसका वेट अलग नहीं होता है, उसका वेट कम हो जाता है। हाँ सोने का ऐसा कुछ है उसका, क्योंकि उसको वो ऐसा, हाँ सोना कम नहीं होता, उसका वजन नहीं, वो उसमें वजन नहीं, वो पारा उसको ऐसा झेल लेता है उसका। हाँ हाँ इस तरह से, जैसे पानी में अभी कोई हम देखते हैं रबर या ऐसी कोई चीज है, वो तो उसका वेट उस वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से उसका कुछ है। इसलिए कहते हैं सुवर्ण में पारद का अपने स्वरूप का त्याग बिना ही प्रवेश देखा जाता है, यानी वो अन्य चीजें उसमें मिल जाती है ना धातु, परंतु ये पारा है वो अलग से ही रहता है। तो कहते कि एक स्कंध में दूसरा स्कंध प्रवेश का हो सकता है, ये शंका करके शंका है, क्योंकि स्वरूप का परित्याग किए बिना ही, यानी दो चीजें कैसे मिली हुई दिखती है, तो क्षार छाणी और मिट्टी में जल आदि का प्रवेश देखा जाता है। क्षार में जल का प्रवेश है, क्योंकि हम देखते हैं ना क्षार में से जल छूट भी सकता है, बाहर भी आता है, वैसे छानी में भी और मिट्टी में भी, परंतु परमाणुओं में यह क्रम नहीं पाया जाता, क्योंकि ऐसा मानने पर समस्त स्थूल कार्यों के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। स्थूल कार्य ने सारे स्कंदों का ही अभाव होगा, परमाणु यदि परमाणु में मिल जाए तो। यदि कहा जाए किन्हीं परमाणुओं का एक देशेन स्पर्श होता है और किन्हीं परमाणुओं का सर्वात्मना स्पर्श होता है। इसलिए परमाणुओं से स्थूल कार्य की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है। ये शंकाकार की बात चल रही है, क्योंकि ऐसा मानने पर स्यात किसी काल में सब पुद्गल एक परमाणु में प्रविष्ट हो जाएंगे। क्या कहते हैं, परमाणु 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 सब इकट्ठे हो जाएंगे तो सब मिलकर एक परमाणु हो जाएगा, तब परमाणु मात्र अवस्थान प्राप्त होगा, यानी सभी जो अनंत अनंत पुद्गल है वो सब एक परमाणु में मिल जाएंगे। यदि कहा जाए कि ऐसा ही हो जाए तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि तब यानी यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो तीन लोक के जीवों के शरीर का विनाश हो जाएगा। कहाँ कहाँ सोच रहा है, ये कुतर्क चल रहा है। यानी एक परमाणु में सभी हो जाएंगे तो सभी जीवों के शरीर उसमें आ गए तो सभी जीव शरीर से रहित हो जाएंगे, तो सब जीवों को मुक्ति का प्रसंग प्राप्त होता है। प्रसंग हुआ है, स के ऊपर बिंदी लगाना। यदि कहा जाए कि एक परमाणु में सब पुद्गल राशि प्रवेश नहीं करती किंतु स्वल्प परमाणु ही प्रवेश करते हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्वल्प परमाणु ही प्रवेश करते हैं, इसका कोई कारण नहीं पाया जाता। यदि कहा जाए कि अधिक अवगाहन शक्ति नहीं पाई जाती इसलिए स्वल्प परमाणु ही प्रवेश करते हैं, क्या कहते हैं, सभी परमाणु क्यों नहीं प्रवेश कर पाते, तो कि अवगाहना थोड़ी कम है। यदि ऐसा कहेंगे, ये स्वयं ही प्रश्न उठाता है स्वयं ही उत्तर देता है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश के सिवाय अन्य द्रव्य में अवगाहन धर्म नहीं पाया जाता। इस पर कहा जाए कि यदि परमाणुओं में परमाणुओं का प्रवेश नहीं होता तो असंख्य प्रदेशी लोकाकाश में अनंत पुद्गलों का अवस्थान कैसे बन सकता है, ये उसी की शंका है, सो भी ठीक नहीं है, कहना ठीक नहीं, क्योंकि अवगाहन धर्म वाले आकाश के महात्म्य से अनंत पुद्गलों का असंख्य प्रदेशी लोकाकाश में अवस्थान मानने में कोई विरोध नहीं आता। ये इतनी बड़ी उसकी शंका है, उसका समाधान यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। यथा परमाणु क्या सावयव होता है या निरवयव? सावयव तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु शब्द के वाच्य रूप उससे अवयव पृथक नहीं पाए जाते। यदि उसके पृथक अवयव माने जाते हैं तो वह परमाणु नहीं ठहरता, क्योंकि जितने भेद होने चाहिए उनके अंत को वह अभी नहीं प्राप्त हुआ है, यानी परमाणु के खंड नहीं किए जा सकते। यदि कहा जाए कि अवयवी को ही हम अवयव मान लेंगे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो बहुव्रीही समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, कारण कि उसके बिना वह बन नहीं सकता। बहुव्रीही ये समास के ना, जैसे कर्मधारय समास होता है, दो शब्द मिलकर एक शब्द होता है, हाँ, जैसे कर्म का विधान वो कर्म विधान ऐसा जो हम कहते हैं, ऐसे अलग अलग शब्द कैसे तैयार होते हैं, उसके लिए बहुव्रीही समास है। बहुव्रीही ब्री नहीं होता, वहां व्री होता है। दूसरे संबंध के बिना संबंध का कारणभूत ऋणी प्रत्यय भी नहीं बन सकता। ऋणी क्या आया था ना, ये तो ऋणी वो तो प्रत्यय उसको आता है ना। अन्य पदार्थ प्रधान है, हाँ, नील कंठ है, जिसका कंठ नील है वो अन्य पदार्थ से उसका वर्णन किया, ये उन्होंने अभी समझ में आया कुछ नहीं कहा। देखो शंकर का एक नाम है नीलकंठ, तो नीलकंठ क्या है, ये नील और कंठ दोनों अन्य शब्द है, तो जिसका कंठ है, जिस नील है कंठ जिसका, ऐसा वह शंकर के लिए नील कंठ ऐसा आया। बहुव्रीह, बहुव्रीह का वो उदाहरण है। हाँ अभी इसके बाद फिर कर लेंगे समाधान से, फिर पढ़ेंगे, हाँ वहीं से देखेंगे फिर शंका मत पढ़वाओ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होलो। विनोद भाई